Om Shiva, 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 Shiva. Nanda Nandan Ananda Kanda. Karuna Sagar Karuna Varunalaya. भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से उनके दिव्य विभूति स्वरूप पावन सागर तट पर बैठ करके देवाधिदेव भोलेनाथ बाबुलनाथ जी के पावन सानिध्य में प्रातर वंदनीय गुरुजनों की इस पावन तपस्थली में बैठकर हम सब साधक वृंद अपने जीवन को कैसे धन्य किया जाए, परमानंद स्वरूप परम प्रेमास्पद अनंत कल्याण का सागर जो हमारा अपना धन्य स्वरूप है, वो किन कारणों से अधन्यता की अनुभूति में डूबा हुआ है और कैसे उस अधन्यता की सीमाओं को तोड़ करके, असीम अधन्यता के बंधनों को तोड़ करके हम आत्मधन्यता का अनुभव कर पाए, इसका एक चिंतन, एक मनन, एक आत्मावलोकन हम सब साधक परम करुणामय भगवान आद्य जगत गुरु आचार्य श्री शंकर के विरचित धन्याष्टकम के माध्यम से कर रहे हैं। आज बड़ा पवित्र दिन है, इस संसार के सबसे नटखट प्राणी का हैप्पी बर्थडे है, इस जगत के सबसे नटखट प्राणी का हैप्पी बर्थडे है। पावन कृष्ण जन्माष्टमी है, बड़ा पवित्र दिन है आज का। आज सुबह जब मैं एकदम आंख खोल करके उठा, बिस्तर पर बैठा और जो अपना नित्य स्मरण है वो जब कर रहा था, तो करते करते ही ये श्लोक स्फुरित हुआ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। मन को बड़ी शांति मिली। परंतु एक प्रश्न भी उठ गया, एक समस्या भी साथ साथ में खड़ी हो गई। समस्या आपको बताऊं क्या? सुनेंगे, आपकी राय भी दे देंगे तो अच्छा होगा। मेरे मन में प्रश्न आया, कृष्ण और गीता जी दोनों यदि साक्षात विग्रह लेकर के सामने खड़े हो जाए, पहले किसको प्रणाम करूंगा? हमारा मन भी बड़ा विचित्र होता है, बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न उठाता है। स्मरण प्रातः स्मरण कर रहा था, स्मरण करते करते याद आया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो मन को थोड़ा संतोष हुआ कि चलो आज भगवान का जन्मदिन है, भगवान की याद आ गई सुबह सुबह। फट से एक प्रश्न आ गया, कृष्ण और गीता जी दोनों साक्षात विग्रह लेकर के खड़े हो जाए तो मैं पहले किसको प्रणाम करूंगा? आप लोग किसको प्रणाम करेंगे भैया? एक मत नहीं है, पहले कृष्ण को। दोनों को साथ में करना होता तो प्रॉब्लम ही नहीं होता ना। हमको तो एक को पहले दिखाना है कि आई मस्ट मोर लव यू। ये तो ठीक है, दोनों को ठगने की बात हो गई ना। आपको जब बताना है कि आप किसको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, एक के प्रति आपको अपने प्यार का यदि इजहार करना है, मैं भी उलझा आप भी उलझे थोड़ा तो। कृष्णम वंदे जगत गुरु ना, हम तो वो करने नहीं जा रहे। मेरा तो केवल ये प्रश्न है कि दोनों मूर्तियां खड़ी है, अब किसको पहले प्रणाम किया जाए? तो हम लोगों को बड़े सहज विचार आता है, साधक की अपनी अपनी प्रकृति भी होती है। परंतु मेरे मन में जो बाद में समाधान आया वो बड़ा संतोष कर था। गीता और कृष्ण को दो अलग समझते हैं तब तक हमने न गीता को समझा और न कृष्ण को समझा। गीता में हृदयम पार्थ, आप कृष्ण को भी प्रणाम कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और गीता को भी प्रणाम कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। आप भले कृष्ण को कर दीजिए और भले गीता में हृदयम पार्थ, व्यक्ति का हृदय व्यक्ति से अलग कभी नहीं हो सकता है। ये तो एक मन की कैटेगरी है कि ये गीता है और ये कृष्ण है, दोनों तो अभिन्न सत्ता है, वो उनका वांग्मय स्वरूप है। फिर भी साधक की अपनी अपनी प्रियता होती है, किसी को कृष्ण प्रिय लगते हैं, किसी को गीता प्रिय लगती है। परंतु मुझे तो ऐसा ही समझ में आता है, गीता से प्यार करना है तो कृष्ण के सिद्धांतों से और कृष्ण के जीवन से प्यार करिए, और कृष्ण से प्यार करना है तो सच्चे दिल से गीता से प्यार करिए। एक अद्भुत सत्ता हम लोगों के बीच में प्रकट होकर के आई। हजारों वर्ष बीत गए, मोर देन 5000, ऐसा लगता है जैसे कल की घटना है और ये कोई हिस्ट्री नहीं है, वो हमारे जीवन के अभिन्न अंग है, आज भी हमारे साथ चल रहे हैं किधर न किधर, किसी न किसी रूप से। हर मां के घर में कुछ भी मिले ना मिले, एक ही नटखट लड्डू गोपाल जरूर मिल जाएगा। और घर में हो ना हो, हृदय में तो फिर आज जब सुबह पूजा करने बैठा तो फिर एक समस्या आ गई। बहुत लंबा चौड़ा संसार सजा करके रखा है, परंतु कृष्ण का विग्रह तो रखा ही नहीं। अब उनका जन्मदिन है, पूजा कर रहा हूं, कृष्ण का तो विग्रह नहीं है मेरे पूजा में, रखा ही नहीं, आया ही नहीं, मैं क्या करूं? और डरते हुए रखा भी नहीं, क्योंकि बड़ा खर्चीला आदमी है ना, ये अकिंचन साधु रहा, उसको पालना कोई बहुत आसान काम नहीं है, इसलिए रखा ही नहीं मैंने। तो शिव जी को अपना एक लोटा पानी डाल दो, बस नमः शिवाय हो गया। परंतु ऐसा पवित्र भाव आया जब पूजा कर रहा था, सब भगवान को ओम कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः बोल के सबको एक एक तुलसी चढ़ा दिया। सब रूप में तो वही तो है, अद्वैत के साधकों के लिए बंधन कहां है? मेरी मां भी कृष्ण ही है, हनुमान भी कृष्ण ही है, शिव भी कृष्ण ही है, नंदी भी कृष्ण ही है, सब विग्रह में सब रूप में तो वही विराजमान है। सबको कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः बोल करके तुलसी और चंदन देके आ गया, अपना तो काम हो गया भैया। ऐसे दिव्य सत्ता का आज जन्मदिन है, जन्मोत्सव तो होगा ही, हम मनाएंगे, परंतु आज सुबह से ही वो दिल पे अधिकार करके बैठा है, इसलिए कुछ उनकी स्मृतियां आपको सुना दी और आज का प्रसंग भी उनसे ही संबंधित है। कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि धन्या कर्तारमन्यम अवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि धन्या। ये जो चतुर्थ श्लोक के चतुर्थ पॉइंट पर बोलना है ये टोटली कृष्ण का सब्जेक्ट है। भगवान ने अच्छा संयोग बिठाया क्योंकि मेरे शेड्यूल के अनुसार तो ये सब्जेक्ट कल ऑलमोस्ट कंप्लीट होना चाहिए था। मैं जिस ढंग से चल रहा हूं क्योंकि 8 श्लोकों पे बोलना है, 16 लेक्चर है, 8 4 दिन तो कल हो ही गए, 8 लेक्चर तो कल हो ही गए, चतुर्थ श्लोक समाप्त होना चाहिए था, बस गया। भगवान ने अपने जन्मदिन के लिए रख दिया कि मेरी याद भी हो जाएगी और तुम्हारा सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। कर्मयोग की यदि चर्चा करनी हो, कर्मयोग का यदि चिंतन करना हो और कृष्ण के विचारों को यदि कोई साइड करके कर्मयोग को समझना चाहे तो इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। बिना गीता की सहायता के कर्म के सिद्धांत को समझे हुए आज तक कोई व्यक्ति यदि कर्मयोग की गहराई में डूबा होगा, मेरा दिल ऐसा विश्वास करने के लिए तैयार। और भगवान कृष्ण की अनेक उपलब्धियों में से मैं ये सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानता हूं, कर्म के प्रति इस संसार को भगवान कृष्ण ने जो दृष्टि दी, पीढ़ी दर पीढ़ी तक ये मानव आत्मा इसके लिए उसकी आभारी रही। कोई यदि घोर नास्तिक हो तो कृष्ण के जीवन का जमकर विरोध कर सकता है, परंतु यदि तर्कवादी है, यदि तर्क के अनुसार चिंतन करता है, थोड़ा युक्ति के अनुसार चिंतन करता है, तो कृष्ण ने जो कर्म का सिद्धांत दिया वो अपने गले की माला बना करके रखेगा। इतना प्यारा कर्म का सिद्धांत, देखो आत्मा के स्वरूप का पुष्कल वर्णन उपनिषदों में मिलता है। देव तत्व का और भक्ति का पुष्कल निरूपण पुराण शास्त्रों में मिलता है, पुराणों में, परंतु कर्म विद्या का पुष्कल विस्तार और कर्म विद्या का पुष्कल निरूपण आपको जैसा गीता जी में मिलेगा ना उपनिषद में मिलेगा ना पुराणों में मिलेगा। जितना विशद, जितना कंप्लीट, जितना क्लियर और जितना जीवन के उपयोगी और जितना एप्लीकेबल, जिसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कर्म का रहस्य विश्व के और किसी ग्रंथ में सजा के रखा हो ऐसा दिखता नहीं है महापुरुषों का। हमारा तो अपना इतना गहना अध्ययन नहीं है विश्व साहित्य का, परंतु जिन महापुरुष ने संपूर्ण विश्व साहित्य को मत करके रखा है उनका यह मानना है कि कर्म के विषय में जो कृष्ण की दृष्टि है, कर्म के विषय में जो गीता की दृष्टि है, वो अन्यतर अनुपलब्ध है। इतना सुंदर सिद्धांत उस महापुरुष ने दिया। आइए हम गीता की दृष्टि से इस कर्म के स्वरूप का आस्वादन करें। मेरा तो बहुत प्रिय सब्जेक्ट है, जब मुझे गीता के ऊपर बोलना हो और कर्म के ऊपर बोलना हो तो मेरा दिल तो ऐसे ही खिल जाता है। देखो गीता में भगवान कर्म में प्रवेश कहां से करते हैं, भगवान की दृष्टि देखी कर्म के प्रति। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। ये गीता जी में प्रथम बार कर्म की चर्चा हो रही है। यहां से भगवान इस कर्म के राज्य में प्रवेश करा रहे हम लोगों का, और अति सुंदर तीन व्याख्याएं कर्म योग की बताते हैं। कर्म योग क्या है, कर्म योग किसे कहते हैं, इसके ऊपर मैं आऊंगा, भगवान के अपने शब्दों से ही आऊंगा। परंतु पहले कर्मयोग के बारे में कृष्ण की दृष्टि क्या है उसका थोड़ा सा आस्वादन कर लें। नेहाभिक्रमनाशोस्ति, अभिक्रम बोलते हैं आरंभ को। कर्मयोग के क्षेत्र में, कर्मयोग के फील्ड में अभिक्रम का नाश नहीं है। अभिक्रम का नाश क्या चीज होती है? बहुत सारे ऐसे वैदिक कर्म होते हैं, आपने आरंभ किया और उसको यदि सांगोपांग पूरा नहीं किया, किसी कारण से यदि वो बीच में छूट गया तो उसका रंच मात्र भी फल आपको नहीं मिलने वाला। आपने जितना परिश्रम किया शास्त्र के अनुसार आपको कोई वो फल, विशेषतः जिस सकाम काम के लिए, जैसे एक दृष्टांत देता हूं, किसी ने संकल्प किया कि मुझे पुरस्चरण करना है फलाने मंत्र का, फलाने देवता का, तो पुरस्चरण का नियम होता है कि जितने अक्षर का मंत्र है उतना अक्षर, उतना लक्ष्य अक्षर जाप करना होता है। तो किसी ने यदि निश्चय किया कि मुझे गायत्री पुरस्चरण करना है तो गायत्री मंत्र का 24 लाख जप उसको करना पड़ेगा। और जप का नियम होता है, जब तक 24 लाख जप आपको करना है, आपने ये डिसाइड किया कि मुझे डेली 5000 करना है, तो डेली आपको 5000 करना ही है। जब तक 24 लाख कंप्लीट ना हो, एक दिन भी आप उसमें से गैप नहीं कर सकते, और एक दिन गैप किया तो वो आपका पुरस्करण खंडित। फिर जिस कामना से, जिस भावना से, जिस संकल्प से आपने किया उसका फल आपको नहीं मिलेगा। तो आपने जो अभी, हो सकता है कि आप 3 साल में पूरा करने वाले थे, 2 साल 6 महीना जाकर के आपका गैप आ गया, केवल 6 ही महीना बाकी था, परंतु एक दिन खंडित हो गया। तो जब करने का अपना पुण्य तो होगा, अपना फल तो मिलेगा, परंतु जिस संकल्प से आपने किया था, जिस कामना की पूर्ति के लिए आपने किया था, चूंकि आपका खंडित हो गया, आपने पूरा नहीं किया, इसलिए वो फल नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं अभिक्रम नाश। आपने जिस संकल्प से प्रारंभ किया था, अभिक्रम किया था, वो अभिक्रम पूरा नहीं हुआ, वो विनष्ट हो गया। कर्मयोग के क्षेत्र में ये कंडीशन नहीं है। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, अभिक्रम का नाश नहीं है। आपने जितना किया, जैसा किया, जितना आपसे बन गया, उसका आपको संपूर्ण फल मिलेगा। वो खंडित हो गया है, वो भंजित हो गया है, उसका फल नहीं मिलेगा, ऐसा कर्म योग का स्वरूप नहीं है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति, कर्म की क्या महिमा है, कर्म योग की क्या महिमा है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति, ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है प्रत्यवायो न विद्यते। वैदिक कर्म कुछ ऐसे होते हैं, आपने यदि उसको ठीक सिस्टेमेटिक ढंग से नहीं किया तो आप पाप के भागी बन जाएंगे। प्रत्यवाय बोलते हैं पाप को। एक छोटा दृष्टांत देता हूं, अहरह संध्या उपासित, त्रिवर्णिक को प्रतिदिन संध्या करनी चाहिए। 365 दिन की 365 दिन ही करनी चाहिए, आरती संध्या करनी चाहिए, तीन टाइम करनी चाहिए। आपने 365 दिन नहीं किया, तीन दिन किया, तो बाकी जो पांच दिन कम रह गए उसका प्रत्यवाय आपको लगेगा, उसका पाप आपको लगेगा। तीन टाइम नहीं करके दो टाइम किया, एक टाइम नहीं किया, उसका प्रत्यवाय आपको लगेगा। ये कर्मों का स्वरूप होता है, वैदिक कर्मों का स्वरूप होता है। आपको यदि प्राप्त है, आपको यदि करना है और आपने नहीं किया तो उसका प्रत्यवाय लगता है। और यहां पर कर्मयोग के विषय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं प्रत्यवायो न विद्यते, इसमें प्रत्यवाय नहीं है। और जो सबसे ज्यादा ब्यूटी है इस कर्मयोग की, जो दिल को टच कर जाती है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पमपि, थोड़ा भी यदि आप अपने कर्मों को पवित्र बना पाए, हम अपने कर्मों को पवित्र बना पाए, हम अपने कर्मों को पूजा बना पाए, तो महतो भयात् त्रायते, महान भय से हमारी रक्षा कर सकते। यह है कृष्ण की कर्म के प्रति दृष्टि। हम अपने कर्मों को इतना पवित्र समझ नहीं पाते, इसलिए हम जैसे साधक जो कर्म के क्षेत्र से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भर भी हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते। कर्म करना हमारी बाध्यता है, कर्म करना हमारी विवशता है। थोड़ी सी समझ पूरा यूटर्न कर सकती है, हमारी इस विवशता को हमारी साधना में कन्वर्ट कर सकती। और ये करना ही पड़ेगा साधक को। जब तक कर्म पूजा नहीं बनेंगे, जब तक हमारी कर्म ही साधना है, ऐसा पवित्र भाव हम अपने कर्मों के प्रति पैदा नहीं कर पाएंगे और कर्मों से जिंदगी भर झगड़ते रहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि कृष्ण भी यदि स्वयं साक्षात आ जाए तो हमारा कल्याण नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाए, अर्जुन के सामने तो साक्षात ही खड़े थे, कुछ कर पाए क्या? जो कर पाए ये ज्ञान देकर के ही कर पाए, और पूरा कर दिया। अर्जुन ने तो बता दिया, गत संदेह करिष्य वचनम तव, परंतु किसके माध्यम से? अपनी उपस्थिति के माध्यम से नहीं, अपने ज्ञान के माध्यम से। इसलिए मैं तो बहुत बार प्रार्थना करता हूं, भगवान आप आए न आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने जो अर्जुन को दिया वो हमारे हृदय में प्रवेश करा देना, बस अपना तो काम बन गया। तो जो मैसेज कृष्ण ने दिया है, कर्म के विषय में विशेषतः, इतना सब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना, ये चारों तरफ घूम रहा मेरे दिमाग में ना, उसको सेटल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, माने किधर से पकड़े उसको। क्या दृष्टि है कर्म के विषय में कृष्ण की? कुछ मुख्य दृष्टियां मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि एक क्लास में सब चीजें समावेश नहीं हो सकती, मैं ऐसा दुसाध्य प्रयास करने की चेष्टा नहीं करूंगा, कुछ चीजें हम पकड़ते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, ये कृष्ण की दृष्टि है भैया कर्म के प्रति। आरुरुक्षो मुनिर्योगं कर्म कारणमुत् चते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, ये एक कर्म के प्रति कृष्ण की दृष्टि है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्ष्य सिद्धिं विन्दति मानव। ये कृष्ण की दृष्टि है कर्म के ऊपर। कितनी दृष्टियां गिनाऊं मैं? पूरे गीता का कोई अध्याय आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां कर्म की एक ब्यूटी को कृष्ण ने न खिलाया हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि गीता यदि पूरी बगिया है तो भगवान ने कर्म के फूल खिला के रखे हैं पूरी गीता में जगह जगह पर। हमारी इस पंक्ति को भी याद रखना पड़ेगा, भैया कर्तारम् अन्यम् अवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि धन्य। अर्थ इसके साथ जुड़ा रहना चाहिए। गीता जी का जो भी मैसेज आए हमारे इस मेन सूत्र के साथ जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम इस सूत्र को पकड़ करके चल रहे हैं। तीन सूत्र मैंने आपके सामने रखे कृष्ण की जो गीता की कर्म की जो दृष्टि है उसके विषय में। एक प्रथम सूत्र को ही पकड़ लेते हैं, थोड़ा चला यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः। हमारे कर्म हमारे बंधन का कारण क्यों बने हुए हैं, हमारा कर्म हमारी पीड़ा का कारण क्यों बने हुए हैं। एक जगह तो बताते हैं स्वस्व कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नर। कल मैंने ये बात हम लोगों के सामने रखी थी, भूमिका ही बनाई थी कि कर्म जो है साधक के लिए द्विधा काम करता है, बंधन का कारण भी वही है और मुक्ति का दरवाजा भी। तो मैंने अपनी बात नहीं बताई, कृष्ण की बात को ही दोहराया। कब तक कर्म बंधन का कारण है? जब तक हमारा कर्म यज्ञ न बन जाए, अथवा यज्ञार्थ न बन जाए। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। ये बड़ा लंबा टॉपिक है कर्म को यज्ञ बनाना और कर्म को यज्ञमय बनाना, फिर भी इसकी जो मेन थीम है, जो मेन फिलोसॉफी है वो हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। यज्ञार्थात कर्म का मतलब क्या है, यज्ञ का मतलब क्या है, यज्ञ का मतलब समझ में आ जाए तो यज्ञार्थात कर्म का रहस्य समझ में आएगा और कर्मयोग का रहस्य भी समझ में आएगा। यज्ञ शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है देना। जब हम कोई यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो हम देखते हैं जब कोई त्याग किया जाता है, द्रव्य का देवता के उद्देश्य से त्याग किया जाता है, तो बोलते हैं इदम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय, इदम न मम, इदम वरुणाय स्वाहा, इदम वरुणाय, इदम न मम, इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदम न मम, इदम सूर्याय स्वाहा, इदम सूर्याय, इदम न मम। तो यज्ञ की जो मेन थीम है, यज्ञ की जो मेन फिलोसॉफी है वो ये है देना। अपने स्वत्व का त्याग करना, अपनत्व का त्याग करना। जब हम किसी वस्तु को किसी को देते हैं और उससे अपना स्वत्व त्याग करके उसको अर्पण कर देते हैं तो ये जो हमारा देना है ये यज्ञ हो गया। यज्ञ का केवल मतलब इतना ही नहीं है कि हम एक आग प्रज्वलित करें और किसी देवता के उद्देश्य से गीर्तादि द्रव्य का त्याग करें, वो यज्ञ का एक सिंबॉलिक रूप है। परंतु यज्ञ की जो विराट भावना है और हमारे ऋषियों ने जिस कल्पना के साथ इस यज्ञ यंत्र को चलाया है, और इसको तो यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, भगवान जिस उद्देश्य से यज्ञ को पावन कर्मों की श्रेणी में रखते हैं, तो यज्ञ की मूल भावना यह है हमारा जीवन देने के लिए हो, हमारा जीवन देने के लिए हो। और जब जीवन क्या हमारा कर्म यदि देने के लिए होगा, वो कर्म कभी भी बंधन का कारण बन ही नहीं सकता। यज्ञार्थात कर्मणु, अन्यत्र यदि हमारा कर्म इसका अपोजिट होगा, केवल लेने के लिए होगा, केवल शोषण करने के लिए होगा, तो वो कर्म बंधन का कारण बनेगा। गीता जी में यज्ञ के स्वरूप के ऊपर गहन मंथन किया गया और पूरे इस जीवन को यज्ञ सूत्र से जोड़ते हुए समष्टि के साथ जोड़ा गया। चतुर्थ अध्याय का आप अवलोकन करके देखिएगा। यदि हम देने की दृष्टि से जीवन जीने की कला नहीं सीखेंगे और जीवन से देने की कला विकसित नहीं करेंगे, हम मनुष्य के रूप में केवल दिखेंगे भर मात्र। आकार भल केवल मनुष्य का बचा रह जाएगा, पूरी पशुता हमारी चेतना के ऊपर छाई हुई रहेगी। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोलना, हमारा देखना पशुता की दृष्टि से भरा होगा। और यज्ञ यदि संपूर्णतया हमारे जीवन में खिल जाए, देने की भावना से यदि हमारी चेतना परिपूर्ण हो जाए, तो इसका ठीक अपोजिट होगा। देखने में वो मानव जैसा ही लगेगा, परंतु वो चलता फिरता भगवान का एक साक्षात विग्रह होगा, भगवान की एक मूर्ति होगी, जो केवल देने के लिए जी रहा है, लेने के लिए नहीं। यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, ये कर्मयोग की एक दृष्टि है। इतनी पावन दृष्टि यदि हमारी जीवन के प्रति विकसित हो जाए, ये दृष्टि कब विकसित होगी, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना जरूरी है। हमारे भीतर कर्तृत्व का एक बड़ा सहज अभिमान होता है, मैं करता हूं, इसलिए हमारे भीतर एक दूसरा विचार जन्म लेता है भोक्तृत्व का, मुझे भोक्ता होना चाहिए, मैं फल का अधिकारी हूं। जब तक व्यक्ति अपने कर्तृत्व पर चोट नहीं करेगा, तब तक वो कभी भी कर्म योगी बन नहीं। ये एकदम ध्रुव सत्य है, ये एकदम शाश्वत सत्य है, ये एकदम लोहे की लकीर है, इसको इधर से उधर नहीं किया जा सकता कि हम कर्ता बने रह जाए और कर्मयोगी बन जाए। बिना सूरज के उदय हुए भी प्रकाश हो सकता है, वो तो शायद संभव हो जाए, परंतु ये संभव नहीं है कि हम अपने कर्तृत्व को पकड़ करके रखे और कर्मयोगी बन जाए। हम कर्ता बने रह जाए और हमारे कर्म भगवान की पूजा बन जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए हमें अपने कर्तृत्व का विसर्जन करना पड़ेगा। और ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुजनों ने, भगवान ने कुछ दृष्टि दी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं, इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं, इस कर्म के करने में, कर्म के संपादन में मेरी अपनी भूमिका कितनी है, ताकि मैं ये डिसाइड करूं कि मैं करता हूं कि नहीं। क्योंकि कर्तृत्व के त्याग की जब बात आती है तो हमारे मन में बड़ा सहज प्रश्न होता है, मैंने किया है, मैं यदि करता हूं तो आप मेरे ऊपर ये दबाव क्यों डाल रहे हो कि मैं इसके अभिमान को छोड़ दूं अथवा इसके स्वकृत्य को छोड़ दूंगा कि मैंने किया नहीं। और ये तो झूठा ही होगा, जब मैंने किया है और आप मेरे को कह रहे हो कि मैं कर्तृत्व का अभिमान छोड़ दूं, इसका मतलब क्या है। इसलिए बहुत बार हम गीता के मैसेज को ठीक अर्थ में पकड़ नहीं पाते, सत्संग के मैसेज को ठीक अर्थ में पकड़ नहीं पाते, जब शास्त्र ये कहता है कि आप कर्तृत्व के अभिमान को त्याग दो, तो कम से कम शास्त्र आपसे ये निवेदन करना चाहता है जो जो आप नहीं कर रहे हो उसके ऊपर अधिकार मत जमाओ। जितना कर रहे हो उतना स्वीकार करो, थोड़े समय के लिए चलेगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। कर्म के प्रति हमारी भूमिका कितनी है, किसी फल को पैदा करने में हमारी भूमिका कितनी है? एक किसान का दृष्टांत ले लीजिए। एक किसान खेती करता है, खेती में से वो अनाज रूपी फल पैदा करेगा, और किसान की एक सहज दृष्टि होगी, एक स्वाभाविक दृष्टि होगी कि ये जितना अनाज पैदा हुआ है इसको मैंने पैदा किया, ये मेरा है। बहुत स्वाभाविक है, इसमें अननेचुरल कुछ नहीं है। परंतु अब विचारकों का विचार ये है कि इस अनाज को पैदा करने में कृषक की भूमिका कितनी है। तो एक तरफ से आप विचार करना शुरू करिए, अनाज पैदा करने के लिए भूमि की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। वो भूमि किसान की अपनी बनाई हुई है क्या? ये तो किसान भी नहीं स्वीकार करेगा कि मैंने भूमि का निर्माण किया है। अच्छा ठीक है, मैटर क्लियर हो गया। पानी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? क्या किसान ये क्लेम कर सकता है कि ये जल मैंने बनाया क्योंकि मुझे खेती करना था, मैंने खेती के लिए बनाया है? नहीं क्लेम करेगा। हवा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? क्या किसान पहले किसी फैक्ट्री में हवा बना के लाता है, फिर वहां छोड़ता है, तब खेती होती है क्या? सूरज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं खेती के लिए? क्या कृषक पहले सूरज पैदा करके वहां लटका के फिर खेती करता है क्या? अच्छा, ये बाह्य परिस्थितियां। बीज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? किसान पहले घर में बैठ के बीज निर्माण करता है फिर लेके जाता है क्या? अच्छा, उसको छोड़ दिया जाए, बाहर की चीजें हैं। शरीर की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो किसान ने खेती करने से पहले अपने शरीर को बनाया कि नहीं? ये जो मूल धातु है शरीर, ये किसान की सृष्टि है, कृति है कि नहीं? किसान का अपना प्रोडक्ट है कि नहीं है? नहीं है। देखो भैया, विचार करके जवाब देते रहना है। मैं जो बीच में थोड़ा गैप देता हूं ना, वो गैप इसलिए होता है कि मैं स्वयं भी विचार करता हूं और आपको भी थोड़ा सा अवसर देता हूं कि आप विचार कर करके आंसर दे। धरती आप बता रहे किसान की नहीं है, हवा आप बता रहे किसान की नहीं है, पानी आप बता रहे हैं किसान की नहीं है, आप बता रहे हो, शरीर किसान का नहीं है, बीज किसान का नहीं है, और जिस यंत्रों से वो खेती होती है, यंत्रों का भी जब मूल खोजते जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रकृति से ही उसको मिला हुआ है, तो यंत्र भी किसान का अपना प्रोडक्शन नहीं है, ठीक? तो फिर भी इन सब पदार्थों के माध्यम से जो फल उत्पन्न होगा उस पर अधिकार किसका है? एकमात्र किसान का, क्योंकि मैं करता हूं। और किसी दूसरे किसान की बात मत सोचो, मैं यदि किसान होता तो मैं क्या समझता, फल किसका है? क्यों? क्योंकि मैं करता। इज इट ओके? इज इट फाइन? व्हाई? कौन? हमने तो देखा नहीं कि परमात्मा ने कभी आके खेती किया। तो हमारी भूमिका क्या है? जो प्रकृति ने संसाधन उपलब्ध कराए थे उसका संयोजन हमने किया, उसका संयोजन किसान ने किया, इसके त्याग की कोई बात नहीं करता है। शास्त्र भी नहीं कहता कि तुम वो भी त्याग दो कि संयोजन तुमने नहीं किया। खेत किसान ने जोता, पानी किसान ने पहुंचाया, रक्षा किसान ने की, परंतु टोटल एज अ होल जब देखेंगे 100% में से किसान के शेयर का जब विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि मोस्टली 2% और 3% उसका शेयर बैठेगा कि ज्यादा, इतना ही बैठना चाहिए ईमानदारी से भी। यदि माने प्रकृति को यदि बाहर निकाल दे तो किसान तो कर नहीं सकता ना। तो प्रकृति के जिस महत योगदान से कर्म संपादन हो रहा है हम उसको टोटली इग्नोर करते हैं, 100% इग्नोर करते हैं। एक रति मात्र उसकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है हमारे दिल में, और जो फल पैदा होता है उसके ऊपर हम 100% अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। अब कुछ दृष्टि पड़ रही कि नहीं, हमारी गड़बड़ कहां है? हम करता हैं, हम करते हैं, परंतु केवल हम ही अकेले करता नहीं। आरंभ में केवल साधक इतना ही स्वीकार कर पाए, उसका दिल उसका मन इतना समझ पाए, तो भी ये जो भोक्तृत्व का अभिमान है ये कम होता है, फलाशक्ति कम होती है। अरे भैया रिजल्ट तो मिलना ही है। एक दूसरी चीज और है गिरीश भाई, मुझे यहां किसी से कंप्लेन नहीं है, केवल एक चीज से कंप्लेन है कि घड़ी जो है हमेशा मेरे सिर पे चढ़ के बैठती है, मुझे बोलने नहीं देती। फिर भी अभी 5-6 मिनट है, मैं इस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करता हूं। दूसरी बात है कर्मयोग के क्षेत्र में जहां हम फेल हो जाते हैं वो है हमारी फलाशक्ति। तो ये जो कर्मों का संयोजन करने तक किसान स्वतंत्र था, उसको खेत को कैसे जोतना है, कब पानी देना है, कितना पानी देना है, इतने में किशोर किसान की एक स्वतंत्रता भगवान ने दी है, परंतु फल पैदा करने का जो फील्ड है, उसके फल जो पैदा करने की प्रक्रिया है, उसमें किसान की नाम मात्र की भी भूमिका नहीं है। फल एकदम टोटली प्रकृति के गर्भ से पैदा होता है और वो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रकृति के कंधों पर है, परमात्मा के कंधों पर है, किसी हायर ऑथोरिटी के कंधों पर है। तो जो हम कर नहीं सकते, जो हमारी सीमा में नहीं है, जो हमारे अधिकार में नहीं है, उसके लिए हम टेंशन करते हैं जिंदगी भर, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। यहां साधक को आकर के अपने दिल को उदार करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। कर्मयोग का मतलब ये नहीं है कि आप योजना बनाना छोड़ दीजिए, कर्मयोग का मतलब ये नहीं है कि आप प्लानिंग बनाना छोड़ दीजिए, कर्मयोग का मतलब ये नहीं है कि कर्म करने का जो सिस्टम है उसको आप फॉलो करना छोड़ दीजिए। इसको भगवान तामसी कर्म बोलते हैं, जिसमें योजना नहीं है, जिसमें प्लानिंग नहीं है, जिसमें सिस्टम नहीं है, जिसमें फल की चिंता को बिना देके कर्म किया गया है। 17वें अध्याय में आप पढ़ेंगे तो इस कर्म को तामस कर्म बताया भगवान ने। तो बेटर प्लानिंग करनी चाहिए, बेटर योजना बनाना चाहिए, बेटर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एकाग्रता के साथ करना चाहिए, परंतु जहां अपनी सीमा आ जाए वहां खड़े होकर के नमस्कार कर देना चाहिए, मैंने कर दिया अब तेरा काम है। अब हम वहां रुकते नहीं, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है एलओसी को कंट्रोल करके हम माने क्रॉस करके हम उधर जाना चाहते हैं। ये उधर जाने का नाम फलाशक्ति है और ये उधर जाने का नाम ही दुस्साहस है, और हम जितना दुस्साहस करेंगे, आप भैया लाइन के इधर ही सुरक्षित है, उधर गए तो पाकिस्तान वाले पीटेंगे। एलओसी मस्ट शुड नॉट बी क्रॉस्ड। ये फल पैदा करना ये प्रकृति का कार्य है अथवा परमात्मा का कार्य है, ये मेरे क्षेत्र की चीज नहीं है। दो चीज यदि साधक एक्सेप्ट कर ले तभी कर्मयोग बनेगा, अन्यथा कर्मयोग बनना संभव नहीं है। एक एक तो ये चीज की जो कर्म संपादन हो रहा है उसमें मेरा अपना शेयर कितना है, मेरी अपनी भूमिका कितनी है, और इतनी भूमिका के बाद भी जो फल पैदा होने वाला वहां तो मेरा प्रवेश भी नहीं है। अब हम लोगों की एक दूसरी समस्या होती है कि ईश्वर के ऊपर छोड़े तो कैसे छोड़े, पता नहीं धोखा कर देगा तो, क्योंकि संसार में इतना धोखा खा खा के आदमी इतना डर गया ना, भगवान से भी डरने लगता शायद धोखा कर दे तो, मैंने छोड़ दिया और उसने इतनी कुछ नहीं दिया तो। विश्वास करिए उससे सुहृद हमारा कोई नहीं है, उससे अपना हमारा कोई नहीं है, उससे प्रियतम हमारा कोई नहीं है। एक मां जिसका अपने बच्चे के साथ केवल इस जन्म भर का संबंध होता है, वो मां धोखा नहीं करती अपने बच्चे के साथ। तो जो हमारे जन्म जन्म का साथी है, जो हमारे प्राणों का आधार है, जो हमारा प्रियतम है, और हमें भी जो अपना प्रियतम मानता है, क्या वो हमारे साथ धोखा करेगा? बल्कि ये धोखा है उसके साथ उसके ऊपर विश्वास नहीं करना। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा कोई धोखा नहीं हो सकता कि हम उसके ऊपर संदेह करें कि वो हमारे कल्याण का काम करेगा कि नहीं, उसने जो किया मेरे साथ वो मेरे कल्याणकारक है कि नहीं, ये सोचना सबसे बड़ा धोखा है उसके साथ। वो हमारे साथ धोखा नहीं करता, वो उतना धोखेबाज नहीं है जितने धोखेबाज हम हैं। इसलिए साधक को एक विश्वास से परिपूर्ण भावना के साथ बड़े उत्साह से कर्मयोग का मतलब ऐसा नहीं है कि आप मुंह लटका दे हमको तो फल चाहिए नहीं, जो हो रहा है वो जाने दो, इसका नाम कर्मयोग नहीं है। परिपूर्ण ऊर्जा, पूरी प्लानिंग और अपना 100% इन्वेस्टमेंट आपके संसाधनों का, आपकी बुद्धि का, आपकी जनशक्ति का, आपकी धनशक्ति का 100% इन्वेस्ट करके कर्म करिए। वही कर्म सात्विक हो सकता है जिसमें प्लानिंग नहीं है, जो आप हॉल हार्टली नहीं कर रहे हो, वो कर्म तो या तो रजोगुणी है या तमोगुणी है, वो कर्मयोग नहीं बन सकता। इसलिए किसी गहरे निराशा में डूब जाने का नाम कर्मयोगी नहीं है। पूरे उत्साह के साथ, टोटल एनर्जी के साथ और टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ जब कर्म करके यदि कोई व्यक्ति कहे कि भगवान ये जो कर्म है ना मेरा, ये पुष्प है, ये आराधना है, ये पूजा है, ये मैंने आपकी शरणों में रख दिया, अब इसका जो भी देना हो तुम देखना, दैट इज योर टेंशन नॉट माइन। इसका नाम है कर्म योग। यह है कृष्ण की गीता की असली शिक्षा। उसी बात को भगवान भाष्यकार यहां बता रहे, कर्तारम अन्य अवगम्य, अन्य कर्तारम अवगम्य, जो दूसरा कर्ता है हमारे साथ, एक कोई कर्ता है जो हमको पकड़ करके करा रहा है। और यही बात भगवान ने गीता में ही बताया, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम चैव पृथक विदम विविदास्य पृथक श्रेष्ठा देवम चात्र पंचमम। ये पांच चीजें मिलकर के कर्म का निर्माण करती है। हम केवल अपना ही भूमिका को स्वीकार करते हैं, बाकी सबको नेग्लेक्ट करते हैं। अरे भैया, पांचों में चार तो तुम्हारे से बाहर के ही है, तुम तो एक ही हो, बहुमत किसका है? तो कर्तारम अन्यम अवगम्य, दूसरा जो करता है उसके शेयर को स्वीकार करते हुए, उसकी भूमिका को स्वीकार करते हुए, और जब हमें स्वीकार हो जाएगा सच्चे दिल से, तो हम अत्यंत विनम्र हो जाएंगे उनके प्रति कि महाराज आप तो 98% कर रहे हैं, मैं तो केवल 2% कर रहा हूं, मेरे वाला 2 भी आप ले लीजिए। तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्म परिपाक फलानि धन्या। ऐसे जो कर्म करते हैं वो धन्य हैं। ये गीता की कृष्ण के कर्म की दृष्टि है और आचार्य शंकर ने उसको यहां पर उठाया। आज उनका जन्मदिन था, अत्यंत पावन दिन था, उनके मैसेज का स्मरण किया। एक ही सूत्र को हम लोग चिंतन कर पाए, 2-3 और छूट गए। तो कर्मयोग की चीजें तो गीता जी में अत्यंत विलक्षण ढंग से उठाई गई है, आप लोग हमेशा श्रवण करते ही हैं। गीता जी का व्याख्यान यहां उद्देश्य नहीं था, परंतु कर्मयोग का यहां प्रश्न था, कर्मयोग का यहां प्रसंग था, कृष्ण का जन्मदिन था, गीता का मैसेज था, ये त्रिवेणी यहां मिल गई और आज हमारा जीवन पवित्र हो गया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।